ఓం శాంతి. గుడ్ ఈవినింగ్. కేసే హై ఆప్? అచ్చే యా బహుత్ అచ్చే? సబ్ బహుత్ అచ్చే హై. ఆజ్ హమ్ ఏక్ బహుత్ సుందర్ టోపిక్ హై. కోర్సెస్ ఔర్ ప్లేయర్ హమారే బీచ్ మే హై. కార్యక్రమ్ కో శురూ కర్నే సే పెహలే మే బతా దూ కి ఆప్ సబ్ కో దేఖ్ కర్ मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक समय था जब हम भी नेशनल प्लेयर इन हॉकी रह चुके हैं और हमारे कोच भी हमारे सामने हैं. तो कहते हैं ना, प्लेयर का तो कोच को देख के वैसे ही उमंग उत्साह बढ़ जाता है और उसकी वो प्यार भरी बातें, वो शिक्षाएं हमें पूरी लाइफ काम आती हैं. और जो आज का हमारा टॉपिक भी है, जो थीम है, वो बहुत सुंदर है. और स्पोर्ट्स में मेन इसी का रोल है. आप सबने इस चीज को फील किया होगा, क्योंकि जब हम ग्राउंड पर होते हैं तो वहां पर जो हम सोच रहे होते हैं या कल्पनाएं बना रहे होते हैं, एक विजन तो वहां बनता है. जब खेल भी रहे हैं तो साथ साथ एक विजन बन रहा है, तो उसका बहुत बड़ा रोल रहता है हमें जीतने में. तो आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन. तो कार्यक्रम को शुरू करने से पहले जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, प्रोफेसर के दीपला जी, उनको मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो स्टेज पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें. हमारे ब्रह्म कुमार ज्योति भाई जी को भी मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो स्टेज पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें. उसके बाद हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं मिस्टर ओम प्रकाश दहिया जी, उनको भी मैं अनुरोध करूंगी कि वो स्टेज पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें. फिर अगले जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है मिस्टर कृष्णकांत, प्रिंसिपल अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़, आप भी आएं और स्थान ग्रहण करें. उसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कुमारी अनुपम, जो हैदराबाद से हैं, तो प्लीज आप भी आएं और अपना स्थान ग्रहण करें. ओम प्रकाश नाम, ओम प्रकाश भाई जी आइए. दैया जी, ओम प्रकाश दैया जी आइए, हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं. तो हम सब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं. कहते हैं जीवन में आज आपको सीखने की आवश्यकता नहीं है, गूगल पे सब कुछ मिलता है. लेकिन अनुभव एक ऐसी चीज है, व्यक्तिगत जो अनुभव है वो एक ऐसी चीज है जो आपको गूगल पर नहीं मिलेगा. और आपके सामने वो महारथी बैठे हो खेल क्षेत्र के, जिन्होंने इतने सालों तक इस खेल क्षेत्र में एक साधना की और आज वर्तमान समय में वो इन ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं. तो आज हम उनके अनुभव सुनेंगे और अनुभव जीवन में काम आता है. कहते हैं जो हमने नॉलेज ली है, जो ज्ञान लिया है, शिक्षा ली है, पढ़ाई ली है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में हमें एक इंसान बनाती है. लेकिन जो अनुभव है वो हमें देवता बना देते हैं, क्योंकि अनुभवों से इंसान सीखता है. तो जो हमारे भाई साहब हमारे बीच में है, तो मैं सबसे पहले जो गेस्ट ऑफ ऑनर है मिस्टर ओम प्रकाश दहिया जी, साई रेसलिंग कोच खरोदाबाद सोनी आए हैं. अच्छा, तो मैं वेलकम के लिए हमारी मीना बहन को बुलाना चाहती हूँ, जो लाइफ मेंबर सूरत से हैं. वो हमारे सभी गेस्ट का बैजिस से वेलकम करेंगे. हाँ, तालियों की आवाजें आती रहे. हम हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं. कहते हैं ना कि जीवन एक सीखने का नाम है, असफलताओं से हमें हारना नहीं चाहिए. उसके लिए कहा गया है कि अगर असफलताएं बार बार आती हैं तो वो हमें मन से कहती हैं, दिल से कहती हैं कि तुमने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की, प्रयत्न नहीं किए, इसलिए हम हार जाते हैं. और फिर से एक उमंग आता है कि मुझे जीतना है. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम आगे अभी सुनेंगे। तो मैं सबसे पहले हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर ओम प्रकाश दहिया जी, जो साई रेसलिंग कोच खुर्दाबाद सोनीपत से हैं, उनसे अनुरोध करूंगी कि वो अपने जीवन के जो अनुभव हैं, ऐसे अनुभव, कहते हैं जीवन में हर एक के एक ऐसा समय आता है जिस समय मन कहता है कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब जीवन में बहुत समस्याएं हैं, अब क्या करें, करें या ना करें। तो ऐसी सिचुएशन में फिर से मन में क्या संकल्प लें, क्या सोचें, ताकि हम अपने जो जीवन का लक्ष्य है और ऐसा कौन सा दृढ़ संकल्प करें कि उसको प्राप्त कर लें। तो मिस्टर ओम प्रकाश दहिया जी,
ओम शांति। मैं आप सभी महानुभावों को, जो विभूतियां स्टेज पर बैठी हैं, और आप सबको हृदय से प्रणाम करता हूं। देखिए, कोचिंग जो प्रोफेशन है, ये मैं समझता हूं कि कोच जो है, पहले थोड़ा सा बता दूं कि हमने अपने कोचिंग लाइफ में बहुत आनंद लिया है। हमने कभी अपने कोचिंग में कभी, मैंने 33 साल जॉब किया है, एक भी लीव अप्लाई नहीं की कभी भी। क्यों नहीं की? कि हम ऐसा नहीं है, सामाजिक आदमी नहीं है, हमारे रिश्तेदार नहीं है, मित्र नहीं है, फ्रेंड नहीं है। हमारा काम सुबह शाम का होता है, कोचिंग का 2 से 2.5 घंटे सुबह, 2 से 2.5 घंटे शाम को, दिन में जाए कहीं भी। और मैं लगभग रात की शादियों में नहीं गया। मैं उनसे अक्षमा याचना करता हूं, भाई मैं अपने बच्चों की सुबह भेजता हूं। तो ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है। मैं तो ये मानता हूं कि ये हमने कभी पुराने न पिछले जन्म में अच्छे कर्म, शुभ कर्म किए होंगे तब मिला। क्योंकि कोई भी आदमी या जीव भी ऐसा नहीं है जो मॉर्निंग में खेलता ना हो। पशु पक्षियों को देखिए सुबह। और हम जब तक स्वस्थ हैं या जब तक जीवित हैं, सुबह शाम मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज करते हैं। और वो प्रोफेशन हमें मिला, हॉबी इज आवर योर माई जॉब, ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए हुई। खेल किया, उसके बाद कोचिंग में आ गए। और कोचिंग में ये है कि हमने कभी अपने जो हमारे गुरु रहे हैं, मैं स्टूडेंट को बताता हूं, हमने कभी डिसओबे नहीं किया। जो कुछ उन्होंने कह दिया वो कर दिया, या करना ही हुआ तो करने की कोशिश करिए। और मैं सबसे ये है कि लक्की हूं कि मेरा जन्म हरियाणा में हुआ। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा खेलों का, एक जैसे बॉक्सिंग का क्यूबा है ना, मैं बॉक्सिंग क्यूबा में रहा 1.5 महीने, और वहां इतना ज्यादा जुनून बॉक्सर में देखा, वही जुनून हरियाणा के सभी घरों में है। हर माता पिता ये चाहते मेरा बेटा तगड़ा हो जा। कमजोर कोई भी, आप बताओ, कोई आदमी कमजोर रहना चाहता है? कोई बीमार रहना चाहता है? ये सब हमारे, वैसे तो हमारे कर्मों का ही फल है, लेकिन चाहता कोई नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि सबसे तगड़ा मैं हूं और सबसे तगड़े मेरे परिवार के लोग संतान हो, ऐसे ही चाहते हैं। हरियाणा में हर घर में, आज तो नहीं कहता मैं, लेकिन जब हम बच्चे थे तो हर घर में गाय भैंस होती थी और अपने बच्चों को बढ़िया खाना, दूध दही का खाना। आज तो लोग नॉन वेज में चले गए हैं, मैंने तो वो भी अपने जीवन में टच नहीं किया और मेरे स्टूडेंट ने भी टच नहीं किया। अब जो कैंपों में चले गए, विदेशों में चले गए, उनकी अब जो भी माने, लेकिन हमारा खाना पीना बहुत अच्छा है हरियाणा वासियों का। नु बोले जिसके काली उसका सदा दिवाली, ये समझते होंगे हरियाणा के कुछ लोग, तो काली मतलब भैंस, जिसके घर में भैंस है उसका सदा दिवाली है। तो पेरेंट्स, हर पेरेंट्स ये चाहता है और हर एक पेरेंट्स ये करता है कि मेरा बच्चा पढ़े और पढ़ाई के साथ खेले। और लगभग पेरेंट्स ये चाहते हैं कि जैसे हमारा एक फागण का महीना आता है, सबके लड्डू घी इस प्रकार से डालते हैं कि मेरा बच्चा तगड़ा हो जाए। और हमने भी ये कोशिश किया है, जो स्टूडेंट हमारे कुछ बच्चे हैं, अपने कोच को समर्पित भावना से उनके साथ रहें, उनके साथ जुड़ें। और मैं हमने एक स्कूल बनाया है प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल करखोदे में, सोनीपत में मेरा जिला है और उसके साथ हमें करखोदा कस्बा, रोना मेरा गांव है। तो मेरे पिताजी, देखो खेती बाड़ी का ही काम होता था किसानों का ये, और पशु पालने का, दो ही काम हमने, दो ही काम आगे बढ़ाए। हम सात भाई बहन हैं, छह एमए पास है। और हमने फिर, मेरे पिताजी थोड़ा सा समय से पहले निकल गए जब मैं कोच लग गया, उसके बाद तो मेरा जो सबसे छोटा भाई था वो दूसरे नंबर का, उसने जॉब ज्वाइन कर ली और जॉब छोड़ाया। तीसरे नंबर के जॉब ज्वाइन की दिल्ली पुलिस में, मैंने ही पहले हरियाणा पुलिस में जॉब ज्वाइन की थी, मैंने छोड़ दी थी वो पांचवें छठे दिन ही। और मेरे जो तीसरे नंबर का भाई हो दिल्ली पुलिस में लग गया। तो हमारे जैसे घर होते हैं बराबर में, ऐसे पशुओं का ऐसे बैठक, ऐसे जो फैमिली रहती है, तो सतप्रकाश बोले भाई हम अपने पिताजी को काका कहते थे और ताऊ को पिताजी। तो बोले मैं काका नमस्ते कराऊं, मां भाई बहुत जरूरी है। तो वो गया तो दुखी सा लौट रहा था मेरा पिताजी। तो उसने भाई सतप्रकाश से उसने कहा मैं काका मैं जाता हूं, मैं दिल्ली जॉब लगी है, मैं जाऊं। अच्छा भाई जाओ, मन मानस पैदा किए थे तुम, उस वध में यूज नहीं करना चाहता, तुम वो बन गए। तो चले आ गया, तीसरे दिन वो आ गया वापस कि यार मेरा तो वो काका की जो बात थी ना वो पिंच करती रही। तो उसने भी आगे फिर खेती करी, मेरे पिताजी चाहते तो खेती करा, मेरे से चाहते थे जॉब करा। तो अब चौथे नंबर का जो भाई था उसने भी कुश्ती की और उसने साइंस बीएससी की, बीएससी के बाद एमपीएड चंडीगढ़ से की, उसके बाद एनआईएस की पटियाला से। और फिर हमने ये प्लान बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे और उस स्कूल में खेल जरूर करेंगे। और अब उस स्कूल में कोरोना से पहले 3600 बच्चे थे और हमारे यहां अब 24 डिसिप्लिन है, 24 प्रकार के खेल हैं और 40 कोचिज काम करते हैं। और लगभग मैं बताऊंगा लगभग 200 प्लस इंटरनेशनल मेडलिस्ट बच्चे उस स्कूल ने दिए हैं। वो सारा डिटेल मतलब एकदम से कंप्यूटर में फीड है। और मैं जैसे साई में लगा तो मैं अफसरों से नजदीक रहा, मैं किसी राजनेता के पास नहीं गया। जब मैं जॉब लगा तो एक राजनेता बोला पहलवाना मेरे साथ भेज दे, उधर एक रैली है जींद में, मंगा जी मैंने वहां हां भर ली प्रिंसिपल की। फिर मैं उसके पास गया अगले, मैं जी पहलवान का नाम मैं नहीं भेजूंगा, मैं चलेंगे, मेरा बेटा चलेगा और मेरी पत्नी भी चलेगी। मैंने किसी स्टूडेंट को कहीं भी यूज नहीं किया, कहीं पर भी, क्योंकि मैं राजनीति में रुचि है लेकिन मैं इन लोगों से मतलब खुश नहीं हूं, इनके जो अपने हैं, जैसे आजकल देख रहे कोई किसी पार्टी को किसी पार्टी में। मैं अफसरों के हमेशा नजदीक रहा और कुछ हमारे कोचिज अफसरों से घबराते थे मिलते हुए, मगर क्यों भाई, हम ही तो हैं जो ये हमारे तो मेडल गिनवाते हैं जाकर संसद में, पार्लियामेंट जो सेशन होता है, कहते इतने मेडल ले आए, कौन ले आता मेडल, कोच की वजह से, स्टूडेंट की मेहनत से, और हम इनसे घबराएं, तो वो भी सारे मेरे से खुश रहते थे ऑफिसर, मैं जब चाहता चला जाता था। तो उस वजह से उस प्रताप स्कूल में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 5 खेलो इंडिया सेंटर हैं, उन्होंने दिए, खुश होकर दिए कि भी इतना डीजी साहब आए थे, कभी इतनी छत के नीचे हमने सारी काम, उसमें अपनी हमारी जो विजिटिंग बुक है ना उसमें लिखा है कि इतना काम तो साई भी नहीं कर रही जितना प्रताप स्कूल अकेला कर रहा है, ऐसे उसके बयान लिख रखे हैं उसमें, तो उन्होंने दे दिए। और हरियाणा खेल विभाग ने भी बहुत, देखो मैं हरियाणा में बहुत ज्यादा, उत्तर प्रदेश में मैं रहा, वहां भी बहुत ज्यादा खेलों का महत्व है, बच्चे कुछ आए हैं, उन्होंने भी बहुत ज्यादा कोशिश कर रखी है, इनाम वगैरह दे रखे, इक्विपमेंट दे रखे, साधन दे रखे हरियाणा में भी हमारा। हम ये तो नहीं कहते कि हमारे पास बहुत अच्छे साधन है, लेकिन साधन हैं और उन साधनों से खूब यूज करते हैं। जैसे शमशेर जी ने बताया हमारे इलाके में खेल का अभाव है, और लेकिन कुछ आदमी अपने प्रयास करते हैं और उस प्रयास करने से सफलता मिल जाती है। तो हरियाणा सरकार ने 6 नर्सरिया प्रताप स्कूल में दे रखी है अलग गेमों की, इस प्रकार से बहुत वहां खेलों का एकदम से, शाम ने 700 बच्चे सुबह 5 बजे ट्रेनिंग शुरू, 4:30 उठते हैं, 5 बजे ट्रेनिंग शुरू, और इस प्रकार से शाम ने, हमने कहा था कि हम देहात में हैं और देहात में अगर बच्चा हमारा शिक्षा से थोड़ा सा हम कमजोर हैं, और मैं ये बताता हूं या आप भी सब जानते हैं, किसी बच्चे का, किसी परिवार का, किसी समाज का, किसी गांव देश की तरक्की और उन्नति केवल 2 ही रास्ते हैं, शिक्षा और खेल, और वो रास्ता ही नहीं है, बाकी तो धंधे हैं, कोई दुकान कर ले, कोई मिस्त्री हो जाए, कोई और कोई काम कर ले। तो दोनों रास्ते, हमने दोनों रास्तों को खूब मजबूती से करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे तो पहलवान है, पढ़ाई नहीं होगी, स्कूल नहीं चलेगा, ऐसी भावना बिल्कुल, भावना है समाज में लेकिन ऐसा है नहीं। जब मैं अपने पहलवानों से अच्छी तरह कोचिंग करूंगा, उधर टीचर बहुत अच्छी तरह पढ़ाएगा और फिर कामयाबी, फिर अनडिसिप्लिन कैसे रहेंगे। हमने बच्चे जब पीटने पड़ते हैं, जब बच्चा अकेला हो, बच्चा अकेला है ही नहीं और हमने नहीं छोड़ना चाहिए। जब बच्चा सुता उठे तो वार्डन रात में उसके पास होते हैं, उठाते हैं, फिर कोच के पास चले गए, उसके बाद फिर नाश्ता किया वार्डन के साथ चले गए, फिर स्कूल में आ गए अध्यापक के साथ आ गए, फिर छुट्टी होकर 2 बजे 2:30 बजे फिर हॉस्टल वार्डन के पास आ गए, फिर कुछ थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट ले, फिर कोच के पास चले गए, कहां है समय बच्चे के पास। ऐसी साइकिल है विद्यार्थी और प्लेयर के पास, बात एक ही है ये, लेकिन स्टूडेंट जो स्कूल का विद्यार्थी है और खेल का विद्यार्थी है, बिल्कुल साइकिल उसके पास समय 1 मिनट का भी नहीं है। कुछ बच्चे आते हैं जी नहीं लगता, मगर इसको 2 दिन 3 दिन दे दो, उसे पता ही नहीं मैं कहां हूं। और हमने कोई भी बच्चा, देखो हमने बच्चे का निर्माण शब्द बोलता हूं मैं, निर्माण करना चाहिए निर्माण, और तभी हमारा समाज भी, हमारा परिवार समाज सब कुछ, हमारा देश। अब जैसे बहुत से ऐसे खिलाड़ी भी हैं हमारे पास जो मेरे लगभग 3000 खिलाड़ियों में से 4 खिलाड़ी मेरे आउट ऑफ लाइन गए, वो बड़ा मुझे दुख हुआ। नशे में चले गए, ड्रग्स में चले गए, इंजेक्शन ले लिए चले गए, और हमने बिल्कुल बहुत पवित्रता से बच्चों को वहां रखा है। हम ये कहते हैं बच्चे हमारे देवता हैं, देवता वो स्कूल चलता है, शिष्य चलता है, देवता तो वही है, बाकी तो हम सब लेने वाले हैं, को टीचर को, कोच को, पीएन को, वार्डन को, रुसैया को, धोबी वाला। और जब मैं 2000 अब विनेश की कहानी मेरे साथ जुड़ गई 2017 में, विनेश ने शादी की, मेरे भांजा है रिलेशन में थोड़ा सा दूरी में, वो मेरा स्टूडेंट है सोमवीर राठी, वो मुझे कुछ पूछ रहे थे आज सोमवीर राठी हमें कहीं, आजकल टीवी में बहुत चल रहा है ना सोमवीर राठी विनेश का, कि विनेश सोमवीर नहीं दिखता कहीं, मगर दिखी कहीं कभी विनेश भी नहीं, आप विनेश से कभी फोन नहीं कर सकते, और वो किसी स्क्रीन में आते भी नहीं है। विनेश की शादी होगी विनेश से, फिर वो मेरे घर के साथ घर बना लिया विनेश राज सोमवीर ने, कि हम तो यहीं अब गुरु जी के पास रहेंगे। 2017 से मेरे मकान के साथ मकान बना लिया, अब वहां हमारे पास अच्छी सुविधा खेलों की। शमशेर जी गए हैं बने, डॉक्टर रघुवीर सिंह जी 2-3 बार गए हैं, हमने वो 12 होल बना रखे हैं, और हमने ये अपने नहीं बना रखे, समाज का पैसा है सारा। हम 4 भाई हैं, चारों भाइयों की जेब में स्कूल से सिंगल पैसा जेब में नहीं आ सकता, अपना गुजारा करो भाई, और अगर पैसा आ गया तो बिल्डिंग। अब हमने वहां 16 होल बना रखे हैं, कबड्डी होल 4 मंजिल पर है, रेसलिंग हॉल के 6 गद्दे लगे हुए 5 मंजिल पर है, बॉक्सिंग हॉल अंदर है, सभी हॉल छतों, जमीन का भाव बहुत ज्यादा है आप देख रहे हैं, हमने सभी छतों पर कवर किया है। और हमने निर्माण करना चाहिए बच्चों का, और बच्चों ने ये समर्पित भाव से सबसे उठकर मैं पहले सबसे पहले परमात्मा का धन्यवाद करो, अच्छा परमात्मा धन्यवाद करो, दूसरा माता पिता का, आंख बंद करके जैसे मेडिटेशन करते हैं वो पावर आ जाएगी आप में, माता पिता का धन्यवाद करो, और फिर अपना यूं बांधो कि मैं किस लिए हूं, मैं यहां बहुत अच्छी जगह हूं, मैं बहुत अच्छा बनूंगा, और मैं इस देश के लिए बहुत अच्छा मेडल ला करके तिरंगा चोटी पर लहराऊंगा। 93 बार 200+ ने मेडल लिया, 93 बार हमारे गोल्ड मेडल है, जिन्हें विदेशी धरती पर तिरंगा और राष्ट्रीय गान के साथ लहराया है, तो ये बहुत अच्छा। मैं ये कहता हूं प्लेयर और कोचेज इस देश के किसी भी समाज के किस्मत आड़े हैं, और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से काम करें, पूरे मन से काम करें, पूरे मन से। कोई मैंने 1987 में जॉब ज्वाइन की थी, 85 में पूरी बही बना रखी है, कौन लड़का कहां था कैसे कहां से आया, कैसे गया, कहां लगा हुआ है। एक बार पदम एमएलए बन गया हमारा, मेरा कोच सबको काम बताओ, मगर अब स्टेडियम बना दे खर खोदे, 200 छोरे में लगवा दूंगा नौकरी, और मैंने लगभग 3000 नौकरी लगवाए हैं, और वो मेहनत से लगे हैं भाई, क्योंकि हर माता पिता चाहता है मेरा बच्चा जॉब करे, मेरा बच्चा सफल हो। तो ये मैंने थोड़ी सी कोचिंग की शायद थोड़ी बात रहेगी मेरी, कोई बात नहीं फिर कभी सही। मैं आपको फिर से हृदय से प्रणाम करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मेरी बात सुनी, नमस्कार, जय हिंद, ओम शांति।
बहुत बहुत थैंक यू ओम प्रकाश भाई जी, आपने इतनी मेहनत की और इतनी मेहनत से आपने इतने प्लेयर्स का जो है जीवन बनाया। आपकी इन ऊंचाइयों को छूने वाली उपलब्धियों के लिए हम फिर से आपका बार बार थैंक यू करते हैं, थैंक यू करते हैं।
एक बात और रहेगी जी, हमने उन खिलाड़ियों के लिए 500 गाय भैंस की डेयरी बना रखी है, और कितना दूध पियो, कितने दही खाओ, कोई कितने मिठाई, जैसे बंदूसी मिठाई बनती है, 500 गाय में से 3 मंजिली डेयरी है क्योंकि जगह की कमी है। नमस्कार जी,
आप खाना चाहे तो भाई साहब के पास जा सकते हैं। क्यों भाई साहब?
स्वागत है।
हाँ, वेलकम है। तो कभी भी मन करे तो हरियाणा का दूध घी खाने के लिए आप वहाँ पहुँच जाना। उसके बाद मैं हमारे भाई साहब जो मिस्टर कृष्णकांत प्रिंसिपल अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ गए हैं, उनसे अनुरोध करूंगी कि वो अपने जीवन के जो अनुभव है, क्योंकि आप कॉलेज प्रिंसिपल रह चुके हैं भी और सेवाएं कर भी रहे हैं, और आपके मार्गदर्शन में जो कॉलेज में जो प्लेयर्स हैं उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। तो एक प्रिंसिपल जो है पूरे कॉलेज के लिए एक रॉयल मॉडल होता है, तो आप सच में एक रॉयल मॉडल रहे हैं और हैं भी और आज भी प्रेरणाएं दे रहे हैं। तो जीवन के वो अनुभव जो सब बच्चों के दिल को छू जाए, तो 5 मिनट में आप हमारे सामने रखेंगे। मेरा सभी गेस्ट ऑफ ऑनर से अनुरोध है कि हम सब समय के साथ बंधे हुए हैं, और कहते हैं जो समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है तो वो आगे बढ़ जाता है, और जो कदम से कदम मिलाकर नहीं चलता है तो समय उसको पीछे छोड़ देता है। तो हमारे प्रिंसिपल सर।
धन्यवाद दीदी। सम्मानित मंच और अति सम्मानित सदन, सर्वप्रथम मैं परमपिता शिव बाबा के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और इस राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे मौका दिया मंच पर बैठने का और आपसे कुछ अपने अनुभव साझा करने का। भाई साहब ने कहा कि बस एक ही कमी है कि हम गांव में रहते हैं। मैं ये मानता हूं क्योंकि मैं भी एक गांव से हूं। भारत भी गांवों में बसता है और टैलेंट भी गांवों में बसता है, और उस टैलेंट को निखारने वाले शिल्पकार जिसको आप कोच कहते हैं वो भी गांवों में बसते हैं। एक शिल्पकार को किसी व्यक्ति ने पूछा कि आप इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बना लेते हो, तो उसने जो जवाब दिया वो बहुत ही सुंदर है कि भाई मूर्ति मैं नहीं बनाता, मूर्ति तो शिला में पहले से ही रहती है, मैं तो उसको तराशता हूं और जो फालतू पत्थर है उसमें उसको हथौड़े और छेनी की चोट से हटा देता हूं और वो बहुत सुंदर प्रतिमा अपने आप निकल आती है। पर हां एक चीज जरूर है, क्योंकि मैंने देखा है कि प्रशिक्षण के दौरान, कोसा मेरी बात से सहमत होंगे, कुछ खिलाड़ी छोड़ जाते हैं क्योंकि जो रिग्रेस ट्रेनिंग होती है उसको जो सह गया वो रह गया और जिसने सहा नहीं वो रहा नहीं। तो होता क्या है, जो विद्यार्थी या जो खिलाड़ी उस चोट को सह जाता है वो मूर्ति बन जाता है, और जो टूट जाता है वो टाइल बन जाता है, पत्थर फर्श में लगता है और लोग पैदल चलते हैं उस पे, पैरों से चलते हैं। और व्यक्तिगत रूप से मैं ये मानता हूं कि संघर्ष, दीदी ने जब शुरुआत की सेशन की तो असफलता से शुरुआत की, एक असफलता वर्ड यूज किया, जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता, जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना कि बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ ही लेते हैं अंधेरे में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो ये जो काम है ये कोच का है और उसके चेले का है, आप उसको चेला कहें शिष्य कहें जो भी कहें, लेकिन उसके अंदर सब्सटेंस होना बहुत जरूरी है। को सब जैसे उबलते हुए पानी में आप अंडा भी डाल दें और आलू भी डाल दें तो आपने ये देखा होगा कि एक सख्त हो जाता है और एक लचीला हो जाता है। पानी वही है, गर्म पानी है, लेकिन दोनों में जो अंदर सब्सटेंस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोच तो मेहनत सभी के साथ करता है, द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को भी कोच किया और द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को भी कोच किया, और आप जानते हैं कि दोनों के उसमें कितना एक तरह से असमानता थी। तो कोच तो सबके लिए एक जैसा ही होता है, उसमें कोई विभ्रांति है ही नहीं, लेकिन विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है कि वो उसमें काम करे। जो आज का शीर्षक इस कार्यशाला का रखा, विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन। विजुअलाइजेशन इज मानसिक दर्शन और अफर्मेशन अभिपुष्टि, क्योंकि ग्राउंड में आप तभी परफॉर्म कर पाएंगे जब आपका मन ये मान लेगा कि मैं ये कर सकता हूं, और मन ये मानेगा तब जब आप पहले उसको अपने विचारों में लाएंगे। और जब व्यक्ति कोई चीज अपने विचारों में लाता है तो वो पहले खुद से संवाद करता है, चाहे वो कोच हो, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो कवि हो, एकदम से कलम उठा करके नहीं लिख सकता, पहले वो स्वयं से संवाद करता है और फिर वो कागज पर आता है। तो जीवन में विचारों का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि किसी ने कहा है वॉच योर थॉट्स बिकॉज दे बिकम योर वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स बिकॉज दे बिकम योर एक्शन, वॉच योर एक्शंस बिकॉज दे बिकम योर हैबिट, वॉच योर हैबिट बिकॉज इट बिकम्स योर कैरेक्टर, एंड वॉच योर कैरेक्टर बिकॉज इट बिकम्स योर डेस्टिनी। तो अल्टीमेटली डेस्टिनी की बात आप कर रहे हैं, भाग्य की बात कर रहे हैं। एक खिलाड़ी की डेस्टिनी क्या है? हर खिलाड़ी ये चाहता है और उसका कोच भी ये चाहता है कि ये ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए, लेकिन शुरुआत कहां से हुई? डेस्टिनी की थॉट से। तो विचार आना बहुत जरूरी है, और विचार भी सकारात्मक आना जरूरी है, बिकॉज जो पॉजिटिव माइंड सेट है, जिसका माइंड ही सेट नहीं है उसका माइंड सेट बनेगा कैसे? और यदि किसी ने अपने माइंड को सेट करना है तो मुझे लगता है कि राजयोग से अच्छा योग कोई इस दुनिया में है नहीं। यह पहला योग है जिसमें आप की आत्मा का परमपिता परमात्मा से मिलन होता है, वो भी आंख खोल के। आप दुनिया का कोई योग देख लो, मंदिरों में जाएं, मस्जिद में जाएं, कहीं भी जाएं, आप आंख बंद करते हो पहले जाके। अरे भाई 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर आप चल के वहां जाते हो, और जाते उसके सामने आए तो आंख बंद कर लेते हो। जबकि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जब भी आपकी मेडिटेशन की क्लास होती है तो वो यही कहते हैं कि भाई भ्रकुटियों के मध्य में आप फोकस करो, आंख को खोल करके रखो। तो ये बहुत ही विशेष प्रकार का योग है जो आपके अंदर एक सकारात्मक सोच पैदा करता है। और माइंडसेट है क्या? माइंडसेट इज व्हाट सेपरेट्स द बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट। आप कई तरह की बातें कर सकते हैं, मेरे पास ये सुविधाएं नहीं है, मेरे पास वो सुविधाएं नहीं है। मैं गूगल पर दीदी देख रहा था एक मजदूर के बच्चे का फोटो, जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, एक कंस्ट्रक्शन साइट पे वो रहते हैं, वो लोग झुग्गी में। तो उसने क्या किया कि चार ईंटें एक तरफ लगाई हैं, चार ईंटें एक तरफ लगाई हैं, उस पर एक स्लैब रखी है, फिर चार ईंटें इधर, चार ईंटें इधर, चार बैक में, और किंग की तरह बैठा है उस पर विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। दिस इज रियली द माइंड सेट। वट एवर फैसिलिटीज यू हैव, ट्राई टू ब्रिंग आउट द बेस्ट फ्रॉम दैट। तो अपने आप से वार्ता करना, जिससे विजुअलाइजेशन होगा, और उसके बाद खुद अपने मन को इसके लिए मनाना कि यस आई कैन डू इट, तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता, ये मेरा मानना है। और बाकी तो अभी बहुत सारे वक्ता यहां पर बैठे हुए हैं, सब अपनी अपनी बातें कहेंगे, तो मैं एक बार पुनः आयोजकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णकांत भाई जी। अनुभव कि डरे नहीं, आगे बढ़े, दृढ़ संकल्प करें, साधन है या नहीं है वो ना सोचें, सिर्फ एक दृढ़ता का संकल्प अपने मन में लें और उसको फिर रोज बार 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 उसको विजुअलाइज करें, देखें कि मैं वो हूँ। जो बात कर रहे थे राजयोग की, तो आप अपने शहरों में जाएंगे तो आपके शहर में ब्रह्म कुमारीज का सेंटर होगा और आप वहाँ पर जाएं और जो बेसिक कोर्स होता है राजयोग मेडिटेशन का, तो वो आप जरूर अटेंड करें। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैं जब ब्रह्म कुमारीज में आई तो तब एक ही कारण था, हम गेम खेलते थे, इंटर यूनिवर्सिटी का हमारा मैच था और उस मैच में जो जब हम खेलने गए तो जो हमारी साथी टीम थी, तो जो हमारे कोच थे वो कह रहे थे हमें, कोई बात नहीं बेटा हम जीतेंगे, कोई बात नहीं बेटा हम जीतेंगे। राइट फुल बैक की मेरी पोजीशन होती थी हॉकी में, तो और जो दूसरे कोच थे तो मेरा ध्यान बार बार उनके वर्ड्स पे जा रहा था। वो बच्चियों को जो है हरियाणवी में गालियां दे रहे थे, मुझे उनका मीनिंग नहीं पता था कि उनका मीनिंग क्या है। तो मैंने अपने कोच से पूछा कि खेल में मेरा ध्यान नहीं जा रहा था, मेरा ध्यान बार बार वहीं जा रहा था। तो सर ने मुझे कहा बेटा लाइफ में बहुत सारी चीजें आएंगी, बातें आएंगी, लेकिन जो साइड सीन्स हैं आपको उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ बॉल पे फोकस करना है कि वो नेट के अंदर ना आए। तो हमेशा मुझे ये बात याद रहती है और जब भी मुझे कोचेज मिलते हैं तो मैं उनको एक बात हमेशा कहती हूं कि वो अपने बच्चों को गालियां ना दें। वो कहते हैं ना, अगर हम अच्छा नहीं बोलते तो गलत भी ना बोले, क्योंकि जो बच्चियां थी दूसरी टीम की, वो फिर हम मैच जीत गए इंटर यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, वो टीम हमारे पास आई और जब वो हमें थैंक यू बोल रहे थे तो उनमें से कुछ बच्चियां मेरे सामने रो रही थी। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि अब जब हम घर लौटेंगे तो रास्ते में हमारा सर हमको क्या क्या कहेगा, तो वो बच्चे कैसे जीतेंगे। आपका कोच का एक एक शब्द उनको जिताता है और हमारे कोच हमेशा हमें एक ही बात कहते थे, कोई बात नहीं बच्चों, आगे बढ़ो, जीतते जाओ। और हम हमेशा मैच जीते, जब तक मैंने खेला, नेशनल खेला, तो हमारी टीम हमेशा जीतती थी। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। उसके बाद जो है हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है प्रोफेसर के दीपला जी, फिजियोलॉजी एजुकेशन स्केटेंटल यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से। तो आप हैदराबाद तो कहते हैं ना स्पोर्ट्स का बहुत गढ़ है, और गढ़ कहते हैं जिसको, तो वहां पर आप रहे हैं और वहां पर अपनी सेवाएं भी देते हैं, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस आपके सामने होंगे। तो आप भी 5 मिनट में अपने जीवन के जो दिल को टच कर जाए वो अनुभव हम सबके सामने रखें, आदरणीय भाई जी।
थैंक यू मैडम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बीके बीना बहन जी एंड बीके ज्योति कुमार सर एंड कुमारी अनुपमा जी एंड ओम प्रकाश दया दहिया एंड कृष्णकांत एंड रोशनी बहन जी एंड मेरे सामने जो बैठे हुए बड़े सीनियर्स कोचेस और टीचर्स एंड डियर प्लेयर्स, आज मैं जो यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, एक 25 साल की एक्सपीरियंस है, और जो हम काम करते हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, और ये यूनिवर्सिटी में अराउंड अफिलेटेड कॉलेजेस मोर देन 800 कॉलेजेस हैं एंड स्टूडेंट्स है हमारे पास मोर देन 4 लाख स्टूडेंट्स पर ईयर एवरी ईयर ज्वाइन होते रहते हैं आउट ऑफ 800 कॉलेजेस। सो हमारे पास स्पोर्ट्स विंग के लिए, इससे पहले तो थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कमी था, अभी लेटेस्ट उस्मान यूनिवर्सिटी में एथलेटिक ट्रैक बना, सिंथेटिक टेनिस कोर्ट्स 4 बने और स्विमिंग पूल 2 है, एक मेन के लिए एक वुमेन के लिए, और इंडोर स्टेडियम है, जिम है, कॉलेज वाइज जिम्स है, कॉलेज वाइज ग्राउंड्स है और बहुत सारे। इससे पहले से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत कुछ है आजकल, और एक 20-30 ईयर्स के पहले अगर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कम था, मगर आज इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है। और मेन प्रॉब्लम क्या बोले तो बच्चों के लिए ग्राउंड का आने के लिए पेरेंट्स का इंटरेस्ट बहुत कम हुआ सर। पेरेंट्स का इंटरेस्ट क्या है, कोई डॉक्टर बनना, बच्चे लड़के कोई डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना और दूसरे दूसरे फील्ड में सॉफ्टवेयर बनना, कोई भी दूसरा अदर देन फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन से एक तो पहला रिक्रूटमेंट तो कम था, और जो एमपीडी बीपीडी बैचलर डिग्री करता वो जो एमपीडी करता मास्टर डिग्री, उसके बाद एमफिल है, एमफिल के बाद नेट है, सेट है, पीएचडी है, पीडीएफ है, जेआरएफ है, बहुत कुछ है। अगर सोर्स के बढ़ाने के लिए अगर है तो एजुकेशन एक अपना हार्डवर्क या कोच में कोच इसका डिफरेंट विंग है। फिजिकल एजुकेशन में तीन विंग होते हैं। एक है फिजिकल एजुकेशन, इसमें जो होता है बीपीडी एमपीडी पीएचडी ये नेट जेट नेट सेट एंड जेआरएफ। और एक विंग होता है कोचेस का डिप्लोमा है, इंडिविजुअल गेम वो गेम से भी एक गेम में स्पेशलिस्ट रहते हैं। और फिजिकल एजुकेशन वाले बेसिक नॉलेज प्ले ऑल गेम्स, बेसिक नॉलेज रहता हूँ पे। और वो बच्चों पर 1000 बच्चे 500 बच्चे अगर कॉलेज में है बोले तो उनको आइडेंटिफाई करके उनको टेस्ट लगा के स्किल टेस्ट बना के उसके अंदर जो जो बच्चे हाइट के हिसाब से थोड़े वेट के हिसाब से थोड़े उनका बच्चों का इंटरेस्ट अलग, वो अलग अलग बैचेस को आइडेंटिफाई कर सकते करके जो कंसर्न कोचेस है नियर बाई वो कोचेस को अटैच करने से अपना टीम हर एक गेम में अपना टीम को बहुत अच्छा बढ़ती है। और तीसरा है अफिशिएटिंग पार्ट, जो कोचिंग करता है जो टूर्नामेंट होता है वहां पर अफिशिएटिंग ना कोच करेगा ना फिजिकल एजुकेशन टीचर करेगा। कोच करेगा ये कोच कोचिंग देने के लिए काफी है, और फिजिकल एजुकेशन ऑर्गेनाइजिंग पार्ट में काफी है, और ऑफिशियल तो जो भी है एसोसिएशन रिकग्नाइज करेगा उसको, उनको स्टेट लेवल एम्पायर रेफरीज और नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल वो एसोसिएशन से आइडेंटिफाई होके उनको टेस्ट देके उनको क्वालिफाई करके उनको ये मिलेगा। जैसा एमबीए है मार्केटिंग फाइनेंस एंड एचआर, जैसा वहां पे तीन डिपार्टमेंट है, ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में भी तीन डिपार्टमेंट है, वन इज फिजिकल एजुकेशन, वन इज कोचिंग पार्ट, अनदर इज अभिषेकिंग पार्ट। ये तीन अलग अलग पार्ट में अपना डिपार्टमेंट चलते रहा। सो इसमें मेन प्रॉब्लम क्या हो तो स्टूडेंट के लिए काफी स्टूडेंट्स पेरेंट्स इंटरेस्ट नहीं दे रहे, जो इंटरेस्ट दे रहे थोड़े गेम में पेरेंट्स जो इंटरेस्ट है उन्हों अब तक आज तक भी नेशनल इंटरनेशनल तो आ रहे, जो नॉर्मल कंडीशन में जो भी बच्चे पेरेंट्स को इंटरेस्ट थोड़ा कम है उसको अवेयरनेस लिटरेसी फिजिकल लिटरेसी उसको थोड़ा इम्प्रूव करके कॉलेज लेवल स्कूल लेवल में थोड़ा इंटरेस्ट पर्सनल इंटरेस्ट लेकर थोड़ा अगर अपडेट करेंगे थोड़ा गवर्नमेंट सपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक उनको बच्चों को मोबाइल फोन से दूर करना है। मेन प्रॉब्लम आजकल है हर दुनिया में नेगेटिव साइड होने का कारण एक ही है मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, वो एक अगर दूर होने के लिए अपन ग्राउंड को बच्चों को अगर ले सकते तो अपना नेशन अभी टॉप लेवल पे भी जा सकता है। और इसके बाहर मैं योगा से रिलेटेड हूँ, ये ब्रह्म कुमारी का जो है राजयोग है, और हम जो प्रैक्टिस करें हम जो कॉलेज पे पढ़ा रहे वो अष्टांग योग है, राजयोग एंड हठ योग। हठ योग डिफरेंट पार्ट बॉडी पोस्चर के लिए, और राजयोग माइंड के लिए, माइंड और बॉडी दो मिलाने के लिए अष्टांग योग बोल के पतंजलि से जो अब बार चल रहा है मार्केट में वो योगा सेंटर के हिसाब से हम वो नियम जो भी अष्टांग योग के उसके तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। उसमें मेन अष्टांग योग में क्या बोले यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एंड समाधि, पहले चार पार्ट हठ योग के, रिमेनिंग फोर पार्ट राजयोग के, दो मिला के अष्टांग योग बोल के पब्लिक में अवेयरनेस आने के लिए और फिजिकल एंड माइंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए ये राजयोग अष्टांग योग जो भी चल रहा है वो आज तक डे बाय डे एक 10 साल पहले अगर देखे तो कुछ भी नहीं था, आज इंटरनेशनल योगा डे जब बना 2015-21 जून में और देर से आज तक लास्ट 30 ईयर्स 40 ईयर से देखा तो एक अलग से डेवलपमेंट है योगा के लिए, और ये लास्ट 5 to 10 ईयर्स में मैक्सिमम डेवलपमेंट पूरे कहीं भी देखो तो भी योगा सेंटर दिख रहा है आजकल, कहीं भी देखे योगा सेंटर योगा सेंटर योगा सेंटर। वो योगा सेंटर में क्या हो रहा है, यम नियम रूल्स सेल्फ रेस्पेक्ट वो तो कुछ भी नहीं है, डिसिप्लिन कुछ भी नहीं चल रहा, सोशल डिसिप्लिन कुछ भी नहीं है, ओनली यम आसना से शुरू कर रहे, आसना एक ही पार्ट बोल के योगा सेंटर बोलने लगा रहे। वो योगा सेंटर नहीं होता, वो आसना सेंटर बोल सकते हैं। कोई और एक सेंटर लगा रहा है योगा सेंटर बोल के, वो योगा सेंटर में वो एक ही करेगा, वो मेडिटेशन ही करेगा, वो मेडिटेशन होता मगर योगा सेंटर नहीं होता। ये थोड़ा अगर योगा सेंटर अगर लगाना चाह रहे, बेसिक प्रिंसिपल्स अपना सेल्फ डिसिप्लिन क्या है, यम नियम है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य ईश्वर प्रणिधान एंड नियम से थोड़े सेल्फ डिसिप्लिन सोशल डिसिप्लिन भी है, शौच सत्य संतोष तपस्व स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये 5.5 जो प्रिंसिपल्स है आजकल प्रिंसिपल में जो भी इम्प्लीमेंट करने वाले बहुत कम हो गए। बेसिक LKG UKG नहीं पढ़ने नहीं आ रहे, डायरेक्ट आसन में चले जा रहे, थर्ड क्लास में जा रहे, थर्ड क्लास से जाकर 10th क्लास में मेडिटेशन में चले जा रहे। ये बेसिक अपन बॉडी कंट्रोल ही नहीं होगा तो माइंड कंट्रोल कहां से होगा। एक 5 मिनट भी अपन एक आसन में स्थिर सुखम आसन बोल सकते ना, आसन मतलब स्थिर सुखम आसनम, एक कंफर्टेबल पोजिशन में 2 मिनट 5 मिनट नहीं बैठ सक रहे, उनको अगर मेडिटेशन कॉन्सेंट्रेट करना बोले तो कहां से होगा। तो पहला बॉडी पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, बॉडी थोड़े आसन के हिसाब से स्ट्रेचिंग देना पड़ता, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ना पड़ता, और कंफर्ट बैठने के लिए सर्कुलेशन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। वो थोड़ा मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये जो राजीव ब्रह्म कुमारी मैडम वाले जो भी बोल रहे हैं वो सब ठीक है माइंड के लिए ओके। इसके साथ साथ फिजिकल एजुकेशन मीन योगा बॉडी पार्ट, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए थोड़े इम्प्लीमेंट अगर कर सके तो ये मेडिटेशन जल्दी कॉन्सेंट्रेशन होने के लिए अपने को इम्पोर्टेंस मिलता है। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट योगा मेडिटेशन के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन को थोड़ा अटैच कर सके तो इम्पोर्टेंस अगर मिला ब्रह्म कुमारी से तो अभी तुरंत अपने को आगे बढ़ने को मौका मिलेगा। थैंक यू वन एंड ऑल फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू सिस्टर्स ब्रह्म कुमारी, थैंक यू वन एंड ऑल।
बहुत बहुत थैंक यू भाई साहब। फिजिकल एजुकेशन का तो मैं अपने अनुभव से कहूंगी कि हमें स्कूल कॉलेजेस में जो हमारे कोच होते हैं टीचर्स होते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, सिखाते हैं, आप सारे अनुभवी भी हैं, बस वहाँ एक ही कमी रह जाती है मेडिटेशन की, विजुअलाइजेशन की। तो उसमें हम ब्रह्म कुमारी की ओर से पूरा प्रयत्न करते हैं, क्योंकि आप नेट पे गूगल पे देखना, रिबेका ओवन एक एथलीट हुई है तो उसके कोच ने उसको डाइट का भी बहुत ध्यान रखा और बहुत अच्छे से उसकी फिजिकल एक्सरसाइज भी कराई। उसको ओलंपिक्स में समर सोल्टिंग का सोल्ट करना था जो रोड को पकड़ के घूमना होता है, दोबारा से उसको पकड़ना होता है, लेकिन वो नहीं कर पा रही थी। तो लास्ट में कोच ने उसको कहा कि बार बार एक ही चीज विजुअलाइज करो, बैठो आप और देखो कि आप ऐसे जो है समर सोल्टिंग का सोल्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, फिर उसको रोड को पकड़ रहे हैं। तो उसने ऐसे घंटों तक विजुअलाइज किया तो फिर उसने गोल्ड मेडल जीता। तो विजुअलाइजेशन इतना हमारी लाइफ में बहुत 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 बड़ा एक पार्ट प्ले करता है। कहते हैं ना, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, पर वो फीलिंग्स के साथ सोचना है। अब आगे मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे ज्योति कुमार भाई जी को। आप कुमार हैं और आप 30 सालों से मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, सुना सुनाया नहीं है, कि आप बहुत ही नम्र हैं, सरल हैं, सहज हैं, और जो राजयोग का आपने अभ्यास किया है वो आपके शब्दों में और आपके जीवन में दिखाई देता है। और आप जो हैं महासचिव है पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ हरियाणा के, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पैरा डेफ जूडो एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, आप हमारे ब्रह्म कुमारी के स्पोर्ट्स विंग RERF के कार्यकारी के सदस्य भी हैं, आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं पंजाब सेवा समिति बल्लभगढ़ फरीदाबाद,
आप विभिन्न देशों में भी जा चुके हैं खेलों से संबंधित खिलाड़ियों को जो है प्रोत्साहित करने के लिए, जापान, दुबई, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भी अन्य सामाजिक कार्य आप करते रहते हैं, तो हम आज आपके अनुभव इस विषय पर सुनना चाहेंगे आदरणीय ज्योति कुमार भाई जी।
गुड इवनिंग आप सभी सम्मानित मंच उपस्थित हमारे कोचेस प्लेयर्स, अभी हमने अपने सभी अतिथियों से सुना, एक्सपीरियंस भी सुना, विजुलाइजेशन क्या होती है ये भी सुना, अफर्मेशन क्या होती है ये भी सुना। ये हम सब जानते हैं कि खिलाड़ी का जीवन एक संत का जीवन होता है। जिस खिलाड़ी के जीवन में डिसिप्लिन है, पंक्चुअलिटी है, प्योरिटी है, टाइम मैनेजमेंट है, कोच के प्रति रेस्पेक्ट है, रिगार्ड है और अपने खेल के प्रति डेडिकेशन है, उसकी सफलता को आज तक किसी ने नहीं रोका है। ये भी हम जानते हैं कि एक खिलाड़ी 20% फिजिकल खेलता है और 80% मेंटली खेलता है। आज का जो विषय कि अफर्मेशन और विजुलाइजेशन का महत्व क्या है, अभी हमारे दैया साहब हरियाणा की महिमा कर रहे थे तो मैं भी फूले नहीं समा रहा था क्योंकि मैं भी हरियाणा से ही हूं। सच में जिस इन्होंने बताया कि इनके जो फादर थे उन्होंने एक भाई के लिए ये कहा कि आप जॉब मत करो और आप खेती करो। ये क्या है? ये विजुलाइजेशन है। एक कोच अपने प्लेयर के लिए गोल सेट करता है कि आपको क्या गोल सेट करना है, उसकी फिजिकल परफॉर्मेंस को देखते हुए, उसकी मेंटल स्टेटस को देखते हुए। आप हॉकी का ग्राउंड देखते हैं, फुटबॉल का ग्राउंड देखते हैं, उस ग्राउंड के अंदर यदि गोल पोस्ट नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या है, उसकी प्राइस क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन जब उसमें गोल पोस्ट सेट कर दिया जाता है तो अमूल्य हो जाता है। इसी तरह ही अगर खिलाड़ी का कोई विजन नहीं है, कोई गोल सेट नहीं है, तो वो जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करता है। आज अभी पेरिस के अंदर पैरालंपिक के गेम्स चल रहे हैं, 8 अगस्त कल वो संपन्न होंगे। मैं पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन हरियाणा की सेवाओं में लगा हुआ हूं पिछले 15 वर्षों से। 84 एथलीट्स प्लस 12 गेम्स के जो प्लेयर्स हैं वो भारत से गए हैं और उसमें से 23 प्लेयर्स वो हरियाणा के हैं। आप समझ सकते हैं कि इंडिया की अंदर हरियाणा की जो पॉपुलेशन है वो ओनली 2% है और पार्टिसिपेशन 22% है, 30% है। और स्टिल अभी कल तक 26 मेडल पैरा प्लेयर्स के आ चुके हैं जिसमें 6 गोल्ड हैं और उन 26 मेडलों में से 8 मेडल हरियाणा के हैं और 3 गोल्ड मेडल हैं। 30% जो मेडल हैं वो हरियाणा के हैं। क्यों हैं? व्हाई? संघर्ष तो आज प्लेयर्स के पास भी है, फाइनेंस की प्रॉब्लम भी है, डाइट की प्रॉब्लम भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। लेकिन जिस खिलाड़ी ने अपना गोल सेट कर लिया और यदि उसे कोचिंग सही मिल गई, मैं आपको बता रहा हूं, दया साहब ने बताया कि हमारे पास 3000 प्लेयर हैं और मात्र 4 प्लेयर जो हैं वो अपनी दिशा भटक गए। ये कोच की 4 खिलाड़ी कोई ज्यादा नहीं है। आज की इस मीडिया की दुनिया में, डिजिटल दुनिया में, चीजों को अच्छा लेना इतना आसान नहीं है जितना नेगेटिविटी हमें पकड़ लेती है। तो किसी भी खिलाड़ी को, मैं खुद जब मैंने पैरा स्पोर्ट्स में ओलंपियंस की, बहुत सारे ओलंपियंस हैं आज, वो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, ध्यानचंद अवार्डी हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, जिनको हमने मेंटल लेवल पर तैयार किया। क्या है, कोई भी खिलाड़ी अपने स्पोर्ट्स एरिना में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देता है, चाहे वो शूटिंग हो, बैडमिंटन हो, रेसलिंग हो, कोई भी गेम हो, लेकिन जब वो अपने इंटरनेशनल लेवल पे जाता है, जब अपने किसी कंपटीटर को देखता है, आजकल गूगल में सब कुछ है कि मेरी कैटेगरी में रेसलर हो, शूटर हो या पावर लिफ्टिंग वाला हो, किसकी परफॉर्मेंस, किसका रिजल्ट कितना है, तो वो मेंटल प्रेशर हर खिलाड़ी के ऊपर रहता है जो इंटरनेशनल लेवल पे जाता है। साथ साथ कोचेज का भी प्रेशर होता है, समाज का भी प्रेशर होता है, देश की गरिमा का भी एक प्रेशर खिलाड़ी के दिमाग पे होता है। और जब वो इंटरनेशनल लेवल पे जाता है तो वहां उसकी परफॉर्मेंस में कमी आती है यदि उसका माइंड सेट नहीं है। फिजिकल फिटनेस तो आप कोचेस देते हैं, लेकिन मेंटल फिटनेस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है यदि टॉप लेवल पे जाना है। आज तो इसकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा है कि मेंटल एक्सपर्ट्स भी, साइकोलॉजिस्ट भी, योगा एक्सपर्ट्स भी टीम के साथ जा रहे हैं, डाइटिशियन भी जा रहे हैं, एक्सरसाइज क्या कैसे करनी है, डाइट कैसे लेनी है, रेस्ट कैसे लेनी है, इन सब का बैलेंस जिसने करना सीख लिया वो जीतता है। तो वहां व्यक्ति, एक स्पोर्ट्समैन अपने मन के अंदर हार जाता है। जब अपने से ऊंचा कोई देखता है, टॉप लेवल का देखता है, और जिसने विजुलाइजेशन कर लिया, जैसे सर ने कहा आई एम द विनर, आई कैन डू इट, दीज ऑल आर द अफर्मेशंस। कहते हैं हारा वो नहीं जिसने बाजी हारी है, हारा वो नहीं जिसने बाजी हारी है, हारा वो है जिसने हिम्मत हारी है, हारा वो है जिसने हिम्मत हारी है। और जब तक हौसला नहीं होगा तब तक फैसला नहीं होगा। तो स्पोर्ट्स के अंदर हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए, और वो प्लेयर को कौन देते हैं, कोचेस देते हैं। ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर अभी आपने एक लेक्चर सुना होगा कि 5 टूल्स आपको बताए, सेल्फ टॉक, साइलेंस, विजुलाइजेशन, अफर्मेशंस और मेडिटेशन। मेडिटेशन सर ने कहा आंख खोल के करना है, स्पोर्ट्स को आंख बंद करके तो नहीं खेलते हैं। आज शीतल देवी जिसके दोनों हाथ नहीं है और वो गोल्ड मेडल लेके आ रही है आर्ची में, आर्चरी के अंदर, तो वो कहां से, मानसिक शक्ति से, मानसिक सशक्तिकरण से। और वो मानसिक सशक्तिकरण, मेंटल फिटनेस आती है राजयोगा मेडिटेशन से। ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं, आपको वहां डाइट नहीं मिल रही, रेस्ट नहीं मिल रहा, 4 घंटे का रेस्ट चाहिए और मात्र आपके पास 40 मिनट है। ऐसी टफ सिचुएशंस के अंदर जो प्लेयर अपने सुबह उठते ही अफर्मेशंस, माना पॉजिटिव वाइब्स में रहना और पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना, और अपने गोल को यहां बैठे हुए देखना कि मुझे ये मेडल मिल रहा है और मैं विनिंग पोडियम के ऊपर खड़ा हूं और गोल्ड मेडल मेरे हाथ में है, जब ऐसा लक्ष्य वो मजबूत कर लेता है उसको 100% कोई भी सिचुएशन हरा नहीं सकती। ब्रह्मा कुमारी स्पेशल यही ट्रेनिंग देती है। मैं आपको बताऊं, गिरिराज सिंह है, ओलंपियन है, जब भी वो किसी, चाहे वो एशियन बुसान में गए, ओलंपिक एथेंस में गए, उसने गेम शुरू होने से पहले मुझे कॉल करनी है, और मैं उस टाइम की बात बता रहा हूं जब कॉल का रेट बहुत ज्यादा होता, आज तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मुझे कहता था भाई साहब मुझे तो घबराहट हो रही है, स्टेज फियर हो रहा है, और अगर आपने 1 सेकंड का 100वां हिस्सा भी अपने स्टार्ट में मिस कर दिया तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते हो। तो मैं उसको अफर्मेशंस देता था, नहीं, हिम्मत देता था शब्दों से, विचारों से, जो सर ने कहा पहले विचार आता है, संकल्प आता है, वो हमारी वृत्ति में आता है, फिर हमारी दृष्टि में आता है, फिर वो हमारे कृति अर्थात एक्शन में आता है, और कृति के बाद वो हमारी सृष्टि में आ जाता है। तो ब्रह्मा कुमारीज में आप सब इस स्पोर्ट्स विंग की कॉन्फ्रेंस में आए, और समय का अभाव है तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि ये विजुलाइजेशन की ट्रेनिंग स्पेशल अभी हम डीडी सर से मिले स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में और आपके खरखौदा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हम लोग ट्रायल लेते हैं स्टेट लेवल का। उन्होंने हमें गांधीनगर का साई का प्रोग्राम दिया है कि आप बच्चों को ये ट्रेनिंग दो कि कैसे अफर्मेशन और विजुलाइजेशन से हम अपनी माइंड पावर ट्रेनिंग को आगे बढ़ाएं। तो आप सभी इस मुकाम पर पहुंचे हैं और मैं अपने शब्दों को विराम देने से पहले आपको दो शब्द कहना चाहूंगा। पहले ये कहावत थी कि खेलोगे कूदोगे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब। लेकिन आज ये परिभाषा चेंज हो गई है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाबों के भी नवाब। आज स्पोर्ट्स के द्वारा आज देखो गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं हमारे बच्चे, उन्हें ए क्लास सर्विसेज भी मिल रही है, अच्छी डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पे, एसीपी की पोस्ट पे। और ये इतना आसान नहीं है, हमें लगता है अच्छा उसका गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, ब्रॉन्ज आ गया, चार साल उसने अपनी सारी इच्छाओं को सब सारी कामनाओं को फुल स्टॉप लगाया होता है। दिन रात एक की होती है खिलाड़ी ने, चार सत्ता इस दुनिया में है, धर्म की सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता और शारीरिक सत्ता। और वैसे तो समय के अनुसार इन चारों सत्ताओं में वैल्यूज में कमी आ रही है, लेकिन आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर के अंदर एक पेज पूरा स्पोर्ट्स का होता है। और खिलाड़ी का महत्व इस दुनिया में इतना है कि ओलंपिक यदि हो रहे होते हैं तो अगर कोई वर्ल्ड वार की भी सिचुएशन होती है तो उसको भी रोकना पड़ता है, ये प्रोटोकॉल है। खेलों के द्वारा हम कैसे शांति और सद्भावना को लाएं, ये एक माध्यम हो सकता है। दो देशों के बीच में वार की सिचुएशन है लेकिन खेल एक माध्यम होता है जो एक टेबल पर बैठकर डिस्कस कर लेते हैं। और आप सभी इस खेल जगत से पधारे हो इस ज्ञान सरोवर के प्रांगण में, मैं आपको पुनः स्पोर्ट्स विंग की ओर से बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार करता हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति भाई जी का, नाम भी ज्योति है और उनका जीवन भी एक जगती हुई ज्योत है जो हम सबके लिए प्रेरणा है। उसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी बीके मीना बहन को जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर का जो है थैंक यू करे। उसके बाद हम सब मेडिटेशन करेंगे और फिर सभी हारमोनी हॉल में जाएंगे। बहुत सुंदर क्लास है, आप सब एंजॉय करेंगे, तो इस क्लास को आप मिस मत करना, आपको ध्यान में रहे। हमारे मीना बहन जो है स्पोर्ट्स विंग में सेवाधारी के रूप में आते हैं और स्टेज का जितना भी कारोबार है बहुत होता है, वो सारी सेवाएं आप बहुत लंबे समय से और बहुत ही सुचारू रूप से कर रहे हैं और बहुत प्यार से कर रहे हैं। और मैं हमेशा ही देखती हूँ कि बहुत दौड़ दौड़ के ये जाते हैं कि स्टेज का सेटअप करना है और बहुत प्यारे निर्माण और रहम दिल हैं हमारे मीना बहन।
ओम शांति। अभी समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए हमें आभार का भार हमें सौंपा गया है, तो हम प्रथम परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत आभार है। उसकी प्रेरणा से ये हमारा प्रोग्राम पल थोड़े आए हैं फिर भी सक्सेस रहा, तो परमात्मा का बहुत बहुत आभार है। फिर हमारे जो भी गेस्ट आए हैं सभी गेस्ट का भी हमने बहुत बहुत आभार है। और हमारे बीच में जो भी गेस्ट है उसका भी आभार है और अनुपमा बेन का, रोशनी बेन का भी जो स्टेज हैंडल की है उसका भी खूब आभार है। और आप सभी के बिना तो ये प्रोग्राम कभी सक्सेस नहीं होता, तो आप सभी का तो खूब बहुत बहुत थैंक्स है। और लाइट वाले, साउंड वाले, वीडियो ऑडियो सभी का भी जो संभाला, सभी का बहुत बहुत थैंक्स। जो वो नहीं होते तो हमारा प्रोग्राम भी इतना सक्सेस नहीं होता। तो जो भी है, जो प्रोग्राम में जो भी छोटा छोटा भी है काम, पर बड़ी अच्छी तरह से किया है, उस सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। ओम शांति।
हमारे मीना बहन का भी बहुत बहुत थैंक यू। अब जो है हम सब मेडिटेशन करेंगे। एक बात और आपको नोटिस में रहे कि जो मॉर्निंग का मेडिटेशन होता है, तो वो आपका मॉर्निंग का जो मेडिटेशन का सेशन है, सुबह जब 4 बजे आप आते हैं तो आपको इसी हॉल में आना है और आपको कमेंट्री के साथ मेडिटेशन कराया जाएगा, क्योंकि सोचते हैं कि आपको क्या करना है। तो कल कमेंट्री के साथ आपको मेडिटेशन कराएंगे, तो 4:05 पहले आपको यहाँ पहुंचना है। तो मैं फिर से आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। आप आए, अपनी ऊर्जा अपनी शक्तियां आपने यहाँ फैलाई और परमात्मा से अनंत शक्तियां आपने अपने अंदर भरी। आप अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, इसको आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जरूर अप्लाई करें। आप डरे नहीं, कहते हैं ना, क्यों डरे, जिंदगी से क्या होगा, कुछ ना हुआ तो तजुर्बा होगा। पर मेडिटेशन में तो अगर आप एक थॉट भी अच्छा क्रिएट करेंगे तो उससे भी एक एनर्जी का फ्लो चारों तरफ फैलता है। आप डरिए नहीं कि बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। बहुत इजी लाइफ है ये। और अब मेडिटेशन जो है हमारे जो संघर्ष वाले जीवन को एक सरल जीवन बना देता है और हमें जीवन काटना नहीं, जीवन जीना सिखा देता है। तभी कहते हैं ना कि अगर आपको किसी का व्यक्तित्व जानना है तो कितनी भी डिग्रियां उसके पास हो, अगर वो आपको कह दे कि अभी भी मैं सीख रहा हूं, तो समझ लो समाज में वो व्यक्तित्व एक एग्जाम्पल है। तो ऐसा एग्जाम्पल हम सबको बनना है। हमारी दादी जी कहते थे 103 साल के, अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, सीख रही हूँ। हमारे जो फाउंडर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा थे, वो भी गेम्स खेलते थे। हमारी मम्मा जो थी, जो हमारी तरह एक कुमारी थी और इस स्कूल में आई, इस बोर्डिंग स्कूल में आई, तो वो भी गेम खेलते थे। हमारे शशि दीदी से आप मिले, तो दीदी जी ने भी कितना अच्छा अनुभव आपको गेम्स का सिखाया। और भी जो हमारे भाई जी हैं, कितने महारथी यहाँ पर हैं, तो उन सब ने इस राजयोग की प्रैक्टिस की है। और सच में हमारे जीवन का बस एक ही लक्ष्य है कि हमें जीवन के हर पल को खुशी खुशी से जीना है। कुछ भी हो जाए, एक बात हमेशा याद रखना, अपने आप को अंदर से कहना, परमपिता परमात्मा मेरे साथ है, ये समय भी बीत जाएगा और मेरी मंजिल मुझे मिल जाएगी। क्या? परमपिता परमात्मा मेरे साथ है और ये मुश्किल की घड़ियां बीत जाएंगी और मेरी मंजिल मुझे मिल जाएगी। तो अभी सब एकाग्र होकर बैठेंगे। हमारी जो बहन है हम सबको मेडिटेशन कराएगी, कुमारी अनुपम हैदराबाद से आई है। तो अपना रिलैक्स होके बैठें सभी, अपना सामान साइड में रखें और जैसे जैसे वो कहें उनको फील करें। ओम शांति। सभी भाई बहन सीधे बैठे, सिट स्ट्रेट प्लीज। थोड़ा अटेंशन में आएंगे। अभी मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले पहला काम बॉडी रिलैक्स करना है। तो विल टेक 3 डीप ब्रेथ्स, लंबी सांस लेंगे। पहले लंबी सांस लीजिए, फिर से एक लंबी सांस लेते हैं। आपको महसूस होना चाहिए कि आपका बॉडी रिलैक्स कर रहा है, यू फीलिंग गुड। और एक और बार हम गहरी सांस लेते हैं। अब अभी आप चाहें तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि अपनी आंखें आप खुली रखें। अपना ध्यान अपने भ्रुकुटी पे एकाग्र करते हुए
शरीर पे रिलैक्स महसूस करते हुए ध्यान आपका प्रकृति पे ये स्थान मुझ आत्मा का परम स्थान है। मैं आत्मा ये शरीर चलाने वाली परम शक्ति बहुत ही सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का पिता वो परम पिता परमेश्वर जो हमेशा मुझ आत्मा का ध्यान रखता है वो प्यार का सागर वो सर्व शक्तियों का सागर मुझ आत्मा का परम पिता है। मैं आत्मा कितना खुशनसीब महसूस कर रही हूँ अपने आप को और कितनी भाग्यशाली हूँ। मुझ आत्मा में गुण अपने मेरे परम पिता परमात्मा ने भर भर के दिए हैं। एकाग्रता की शक्ति खुशहाल जीवन मेरे जीवन का लक्ष्य मैंने उठाया। एक गेम अपना स्पोर्ट्स मेरा जीवन का लक्ष्य है। उसको प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने मुझे पहले से ही काफी गुण और शक्तियां दिए हुए हैं। मुझ आत्मा को बस वो रियलाइज करना है। संकल्पों के साथ मुझ आत्मा को कितनी खुशी महसूस हो रही है। अपनी शक्ति महसूस हो रही है। इस जीवन में मेरे पास सब कुछ है यह मुझे महसूस हो रहा है। सौभाग्य की अनुभूति हो रही है। खुशनुमा जीवन से बेहतर और मुझे क्या चाहिए। वो परमपिता परमेश्वर सदैव मेरे साथ है। एक कदम मेरी हिम्मत का 100 कदम वो परमेश्वर मेरे लिए लेने के लिए खड़ा है। मेरा सौभाग्य है और मेरे पास वो सारी शक्तियां वो सारे स्किल्स मेरे पास हैं जो मुझे उस मकाम तक पहुंचाएंगे। साथ सुख की अनुभूति के साथ आनंद की अनुभूति के साथ, इन्हीं श्रेष्ठ संकल्पों के साथ मैं आत्मा धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। ओम शांति।